नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगड़ा से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, भारत दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री ने सूरत के उधना और ओडिशा के ब्रह्मपुर के बीच चलने वाले गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। भारत ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करता है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी दक्षिणी भारत और ओडिशा के कई हिस्सों में आज अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की और 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने गुजरात में सूरत के उधना और ओडिशा के ब्रह्मपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल उधना रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रहे। ये ट्रेन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों को जोड़ेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओडिशा और गुजरात के बीच संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
ब्रह्मपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां के लोग सूरत में न रहते हो। आज उनके लिए ये सीधी रेल सेवा शुरू हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य में 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है। श्री मोदी ने कहा है कि 2017 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद कर का बोझ काफी कम हो गया है, जिससे नागरिकों पर वित्तीय दबाव कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल द्वारा स्थापित 97,005 से अधिक नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि भारत 2G, 3G और 4G तकनीकों के विकास में पिछड़ा रह गया था और इस क्षेत्र में विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और बुरला संबलपुर स्थित विमसार को विश्वस्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में अपग्रेड करने की योजना की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सूरत से उधना रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला खंड सूरत से विलीमोरा तक शुरू किया जाएगा। सेवा और सुशासन के मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलाव और प्रगति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सेवा पर के इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे भारत से चोरी की गई मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं को दुनिया भर से वापस लाकर भारत के सांस्कृतिक गौरव को फिर से जीवित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा जीवंत रही है, जो परंपराओं से जुड़ी होने के साथ साथ दुनिया के लिए खुली भी है। भारत से चोरी हुई मूर्तियों और पवित्र अवशेषों को विदेशों से वापस लाना हो या लंबे समय से खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को फिर से प्राप्त करना, ये सब सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कहानी है, यानी खोई हुई चीजों को वापस लाना।
आज का भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है। बीते एक दशक में हमने देश की धरोहरों के संरक्षण पर मिशन मोड में काम किया है। देश की एंशियंट स्टैच्यूज और आर्टिफैक्ट्स जिन्हें चुराकर विदेशों में बेच दिया गया था, उन्हें वापस लाया गया है।
2014 के बाद से 642 चोरी की गई प्राचीन वस्तुएं बरामद की गई है और उन्हें वापस लाने का काम अलग अलग चरणों में चल रहा है, जबकि 2013 से पहले ये संख्या सिर्फ 13 थी। विदेशों में तस्करी की गई कई कलाकृतियों को अब राजनयिक चैनलों, कानूनी कार्रवाई और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से वापस भारत लाया जा रहा है। इस साल सबसे चर्चित वापसी में से एक था भगवान बुद्ध के पिपराहा अवशेषों का, जो ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय विरासत के लिए खुशी का दिन बताया। अन्य बरामद प्राचीन वस्तुओं में यूके से ब्रह्मा और ब्राह्मणी के पत्थर की मूर्तियां, अमेरिका से दुर्गा की पत्थर की मूर्ति, नृत्य मुद्रा में नटराज की बलुआ पत्थर की मूर्ति एवं धातु से बनी बाहुबली की मूर्ति, ऑस्ट्रेलिया से बैठे हुए बुद्ध और कनाडा से पैरट लेडी शामिल है। कुछ ऐसी वस्तुएं विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस भी दी गई। हर बरामद मूर्ति हर पुनर्जीवित स्मारक में एक राष्ट्र की अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने की भावना होती है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विरासत सिर्फ इतिहास नहीं, ये मानवता की साझा चेतना है।
हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की एक
भारत ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का महिमामंडन करता है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संबोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पटेल गहलोत ने भारत में आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने भारत की आत्मरक्षा के अधिकार पर जोर दिया। प्रथम सचिव ने कहा है कि आतंकवाद का महिमामंडन करना पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र है। भारत के साथ शांति चाहने के शरीफ के बाद दावों को जवाब देते हुए उन्होंने दोहराया है कि पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकवादी शिविरों को बंद करना चाहिए और वांछित आतंकवादियों को सौंप देना चाहिए। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि भारत फिलिस्तीन में करोड़ों डॉलर की लागत से एक अस्पताल परियोजना पर काम कर रहा है। राजदूत ने कहा है कि भारत का विदेश मंत्रालय फिलिस्तीन के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य क्षेत्र में बने दबाव के कारण ओडिशा के अधिकांश हिस्सों पर तेज बारिश हो रही है। उधर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना के लिए अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो गई है। 9 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में कुल 186 पदक स्पर्धाएं होंगी। इनमें पुरुषों के लिए 101 और महिलाओं के लिए 84 एवं एक मिश्रित स्पर्धा में स्प्रिंट और लेकर धीरज दौड़ तक शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव जो इस महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कर कटौती की घोषणा की है। जिम और फिटनेस सेंटरों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली को और अधिक किफायती बनाना है। इस कटौती से जिम की सदस्यता में भी वृद्धि होने और जिम के मालिकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही नए जीएसटी संरचना में दूध से बने पेय पदार्थों और सूखे मेवों जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों पर भी 5% की दर लगाई गई है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मध्यम वर्गीय परिवारों को कर में राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली निवासी आकांक्षा ने जीएसटी में कमी के सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया।
गवर्नमेंट ने जो जिम और फिटनेस सेंटर्स में टैक्स कम कर दिए हैं, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अब जिम और फिटनेस सेंटर्स की फीस कम हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी जीएसटी कम कर दिया गया है, तो इससे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना भी अफोर्डेबल हो गया है। गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, इससे बिजनेस को भी फायदा होगा, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग जिम ज्वाइन करेंगे और फिटनेस सेंटर्स जाएंगे। तो इस डिसीजन से सबका बेनिफिट हो रहा है एंड मेनी ऑफ अस आर ग्रेटफुल एंड वी वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। समर्थ सिंह के साथ सौम्य शरण।
आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिवस लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और सतत परिवर्तन, जो सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने में पर्यटन की शक्ति पर जोर देता है। यह दिवस 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के कानूनों को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे पहली बार 1980 में मनाया गया था। ये दिवस सामाजिक आर्थिक विकास और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को प्रगति में इस क्षेत्र के योगदान को दर्शाता है। और कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग कल गोलफेस ग्रीन में भारतीय सांस्कृतिक संघ के सहयोग से विकसित भारत रन 2025 का आयोजन करेगा। ये दौड़ सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है जो भारत और विदेश में सामुदायिक सेवा और निगरानी भागीदारी को समर्पित है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।